दरवाजा खोला तो देखा नैना सामने खड़ी थी। मैं अंदर आ जाऊं? वो आदित्य से पूछते हुए बोली, जो दरवाजे पर खड़ा था। आदित्य एक तरफ हट गया। भैया आप भी तैयार होकर नीचे आ जाइए, मॉम बुला रही हैं। मैं मनाल को लेने आई हूं, आज इसकी पहली रसोई है। नैना कमरे में दाखिल होते ही मुस्कुराकर बोली। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसे टोका, वैसे मुझे लगता है तुम्हें दीदी कहना चाहिए, ये रिश्ते में तुमसे बड़ी हैं। ये कहकर वो बाथरूम की ओर चला गया। मनाल नैना के साथ नीचे लॉबी की ओर चली गई। आदित्य का इस तरह से नैना को टोक देना मनाल को हैरान कर गया। उसके लिए किसी का यूं स्टैंड लेना उसे अच्छा भी लगा। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस रिश्ते को लेकर आदित्य के मन में कहीं ना कहीं सम्मान है। जब वो नीचे पहुंची तो नाश्ता लगभग तैयार था। अनीपा जी उसका इंतजार कर रही थीं। मनाल खाना तैयार है, आओ बस तुम हाथ लगा दो, माम ने प्यार से कहा। अगर कुछ बनाना हो तो मैं बना देती हूँ, मुझे खाना बनाना आता है, मनाल ने विनम्रता से जवाब दिया। नहीं बेटा, सब कुछ बन चुका है, तुम और नैना मिलकर सब कुछ सर्व कर दो। मनाल और नैना ने मिलकर नाश्ता सर्व किया। मनाल को परिवार में अपनापन महसूस हो रहा था, सभी उसे बहुत स्नेह से पेश आ रहे थे। उसी वक्त आदित्य भी तैयार होकर नीचे आ गया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और मनाल जानती थी उस मुस्कान की वजह क्या थी। पूरा परिवार हंसी खुशी नाश्ता कर रहा था और शाम के रिसेप्शन की तैयारियों की चर्चा भी चल रही थी। पहली रसोई के उपलक्ष्य में सभी ने मनाल को गिफ्ट दिए। भैया आप क्या गिफ्ट दे रहे हो मनाल दीदी को, नैना शरारती अंदाज में आदित्य से पूछने लगी। आदित्य मनाल की तरफ देखने लगा। मनाल ने उसकी नज़रें महसूस की और तुरंत नज़रें झुका ली। मुझे तो पता ही नहीं था कि गिफ्ट देना होता है, मैं शाम को कुछ अच्छा सा दूंगा। वैसे माना तुम्हें क्या चाहिए? अगर भैया पूछ रहे हैं तो आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट मांग ही लेना चाहिए दीदी, नैना हंसते हुए बोली। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है, मनाल ने धीमे स्वर में कहा आंखें झुकाकर। तभी सामने से एक व्यक्ति आता दिखा, एक बैग लिए हुए अधेड़ उम्र का आदमी। वकील साहब मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आदित्य ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। माफ कीजिएगा मैं जल्दी आना चाहता था लेकिन थोड़ी देर हो गई, मुझे पता है कि आज आपकी रिसेप्शन है और आप बहुत व्यस्त होंगे, कहते हुए उस व्यक्ति ने फाइलों से कुछ दस्तावेज निकाले और उन्हें मनाल के सामने रख दिया। इन सब पर साइन करने हैं मैम। मनाल ने चौंक कर आदित्य की ओर देखा। आदित्य ने सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। मनाल को समझ नहीं आया कि ये किस चीज के कागजात हैं, पर उसने कोई सवाल नहीं किया। जो भी कागज वकील अरुण मेहता ने आगे बढ़ाए वो चुपचाप उन पर साइन करती चली गई। उसका मन कह रहा था शायद ये शादी का कोई अग्रीमेंट होगा जिसमें लिखा होगा कि उसे आदित्य की किसी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और अगर कभी तलाक हो तो वो कोई दावा ना कर सके। वो सबके सामने कुछ भी पूछकर अपनी इज्जत और रिश्ते की सच्चाई को उजागर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बिना पढ़े सारे पेपर साइन कर दिए। सारे दस्तावेज पर साइन करवाने के बाद वकील अरुण मेहता ने एक प्रति मनाल को देते हुए कहा, ये आपकी कॉपी है मिसेस राजवंश, अब मैं आपको इसकी सारी शर्तें बता देता हूँ। मनाल चौंक गई, उसने आदित्य और वकील दोनों की ओर देखा। वो चाहती थी कि बात वहीं रुक जाए क्योंकि उनकी डील कोई और न जाने, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहे वकील अरुण मेहता बोल पड़ा, शायद आपको पहले ही मिस्टर आदित्य ने बताया होगा, उनकी नानी की संपत्ति जो पूरी तरह से आदित्य के नाम थी अब आप दोनों के नाम ट्रांसफर हो गई है। जी, मनाल कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। धर्मपाल जी ने बात आगे संभाली, पूरी बात मैं बताता हूँ, मनाल ने ध्यान से उनकी बात सुनी। आदित्य की माँ मेरी पहली पत्नी, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, आदित्य के जन्म के कुछ दिन बाद ही वो दुनिया से चली गई। उसकी नानी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, लेकिन उसमें शर्त थी, उसे ये संपत्ति तभी मिलेगी जब वो शादी करेगा, और शादी के बाद आधी प्रॉपर्टी आदित्य के नाम होगी आधी उसकी पत्नी के नाम, मगर इस प्रॉपर्टी को ना तो आदित्य और ना ही उसकी पत्नी बेच सकते हैं। उनके बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे तब वो लोग अपने अपने हिस्से को बच्चों के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर किसी वजह से आदित्य अपनी पत्नी को तलाक देता है तो ये सारी संपत्ति बनारस के एक आश्रम को दान कर दी जाएगी, इसलिए ये संपत्ति अब तुम दोनों की है, लेकिन उसका मालिकाना हक तुम्हारे बच्चों तक ही जाएगा। तुम दोनों इसे बेच नहीं सकते, एक दूसरे के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकते, मगर आमदनी का उपयोग अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकते हो। धर्मपाल जी की आवाज शांत थी, मगर उनके शब्द मनाल के कानों में घंटियों की तरह गूंजते रहे। मनाल हैरान थी, स्तब्ध थी। उसने तो सोचा था वो एक सौर्य की दुल्हन बनी है, लेकिन यहाँ तो उसके नाम पर संपत्ति ट्रांसफर हो रही थी। उसने ये कल्पना भी नहीं की थी कि इस रिश्ते के पीछे कुछ और भी था, एक पुरानी वसीयत, एक नानी का आशीर्वाद और एक अटूट बंधन।